ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणि विदमब्रवीत् वर्षदत्य सिद्धानां पार्षदानां शृण्वताम्। तत्पश्चात परम साधु नारद असुरों सिद्धलोक के वासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगियों के समक्ष सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बोले और वे सब सुनते रहे। तो ये एक श्लोक आज का श्लोक है और ये पूरा प्रसंग बहुत ही रुचिकर है, शिक्षाप्रद है, बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। विशेषकर वैष्णव समाज में भक्तों के बीच में डीलिंग्स को लेकर के कि किस प्रकार से जो है वैष्णव समाज के अंदर भी भक्त समुदाय के अंदर भक्तों को आचरण करना चाहिए और क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है उसे करके, और होती भी हैं, लेकिन उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये पूरा जो प्रसंग है उस तरीके से बहुत शिक्षाप्रद है। तो आप श्लोक दोहरा सकते हैं। श्री रुद्र उवाच दृष्टवत्यस्ति सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां। श्री रुद्र उवाच दृष्टवत्यस्य सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां। श्री रुद्र उवाच दृष्टवत्स्यस्य सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां। श्री रुद्र उवाच भगवान शिव ने कहा दृष्टवत्स्यसि क्या तुमने देखा सुश्रोणी हे सुंदर पार्वती हरे हे श्री भगवान के अद्भुत कर्मणः विस्मयपूर्ण कार्य महात्म्यम महानता भृत्य भृत्यानां दासानुदासों की निःस्पृहाणां इंद्र तृप्ति के आकांक्षा से रहित महात्मनाम महान पुरुषों का अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय जनार्दिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान शिव ने कहा हे सुंदरी तुमने वैष्णवों की महानता देख ली श्री भगवान हरि के हरेर दास भृत्य भृत्यानाम श्री भगवान हरि के दासों दास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। तात्पर्य पार्वती पति भगवान शिव ने अपनी पत्नी से कहा हे पार्वती तुम अत्यंत सुंदर शरीर वाली हो सुश्रोणी तुम यशस्वी भी हो किंतु तुम श्री भगवान के दासानुदास भक्तों की सुंदरता तथा महिमा की बराबरी नहीं कर सकती। निस्संदेह जब वे अपनी पत्नी के साथ ऐसा परिहास कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि भक्त के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं कह सकता था। इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है इसमें। ऑफ कोर्स लॉर्ड शिवा स्माइल्ड व्हेन ही जोक्ड विद हिम विद हिज वाइफ इन दैट वे फॉर अदर्स कैन नॉट स्पीक लाइक दैट। इसमें लिखा है कि भक्त के अतिरिक्त बट ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है तो शिवजी के अलावा और कोई नहीं कह सकता। तो ये थोड़ा सा हिंदी का जो अर्थ चेंज हो रहा है इससे। भगवान शिव ने आगे कहा परमेश्वर के कार्य महान होते हैं और उस और अपने भक्त चित्र केतु पर उनके विचित्र प्रभाव का यह दूसरा उदाहरण है। देखो ना तुमने इस राजा को शाप दिया है किंतु न तो वह भयभीत हुआ नहीं वह दुखी है उल्टे उसने तुम्हारा सम्मान किया तुम्हें माता कहकर संबोधित किया और अपने को दोषी मानकर जो है शाप स्वीकार किया। उसने प्रतिकार में कुछ भी नहीं कहा यही भक्त की श्रेष्ठता है। तुम्हारे शाप को विनम्रता पूर्वक सहन करके उसने तुम्हारी सुंदरता तथा तुम्हारी शाप शक्ति की महिमा को मात कर दिया है। मैं निष्पक्ष होकर यह कह सकता हूं कि चित्रकेतु ने ईश्वर का भक्त होने के कारण ही तुम्हें तथा तुम्हारी श्रेष्ठता को पराजित कर दिया है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तरोरपि सहिष्णुना अर्थात भक्त वृक्ष के समान समस्त शापों तथा विफलताओं को सहन कर सकता है। भक्त की यह श्रेष्ठता है। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव ने पार्वती को भविष्य में चित्रकेतु जैसे भगवत भक्त को शाप देने की भूल न करने के लिए आगाह किया। उन्होंने संकेत किया कि यद्यपि तुम शक्तिमान हो, किंतु राजा चित्रकेतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना ही अपनी सहिष्णुता के कारण तुमसे आगे हैं। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है, और अपने शुद्धिकरण और भगवान के भक्तों के गुणगान के लिए इस श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही जब प्रिपेयर किया करने लग रहा था मैं, तो मेरे लिए बहुत कठिन था इस श्लोक को प्रिपेयर करना, लेकिन बहुत शिक्षाप्रद है। इसलिए मैंने कुछ भागवतम से जो है क्रोध के ऊपर और शाप शाप अनेकों प्रकार के शापों की घटना जो है भागवतम में है, तो उनको कंबाइल करने का प्रयास किया। श्री रुद्र उवाच दृष्ट वत्सति सुश्रोणी हरे अद्भुत कर्मण महात्म्यम वृत्त वृत्यानाम निस्मृणा महात्मनम। भगवान शिव ने कहा, हे सुंदरी, तुमने वैष्णवों की महानता देख ली। श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। तो हम ये प्रसंग सब भक्त लगभग लगभग जानते हैं, और अभी प्रसंग का जो आखिरी सेक्शन है वो है, इसके बाद ये प्रसंग समाप्त हो जाएगा। इस आखिरी प्रसंग के अंदर भगवान शिव भगवान के भक्तों और भगवान हरि का गुणगान करते हैं कि किस प्रकार भगवान और उनके भक्त जो हैं अत्यंत महान हैं। क्यों? क्योंकि उनके भौतिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, और वह सुख और दुख मतलब हानि लाभ इत्यादि इन द्वंद से ऊपर उठ करके वो हर परिस्थिति के अंदर जो है भगवान का गुणगान करने में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रसंग भागवतम में आते हैं। सबसे पहले तो आता है भागवतम के प्रथम स्कंद के अंदर, ये जो भागवतम शुरू हुआ इसका ओरिजिन भी एक श्राप से ही था। ऐसे करते यहां हम देखते हैं माता चित्र पार्वती चित्र को श्राप दिया, लेकिन जो भागवतम बोला गया ये भी परीक्षित महाराज को एक श्राप मिला था। किसके द्वारा? एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, श्रृंगी श्रृंगी शमी ऋषि के पुत्र थे वो श्रृंगी। तो उसके अंदर भी हम देखते हैं तीन मुख्य दो कैरेक्टर्स, विशेषकर तीन कैरेक्टर्स अगर हम देखें, महाराज परीक्षित हैं, श्रृंगी ऋषि हैं, ऋषि पुत्र हैं, और शमी ऋषि हैं। तो यहां ये भागवतम के 18वें अध्याय के अंदर ये प्रसंग आता है। अभूतपूर्व सहसा श्रुतृणाभ्याम अर्धित आत्मना ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मन मत्सरो मन्युरेव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तो इस तात्पर्य में प्रॉपर लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित इस राजा के लिए मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था कि राजा को जो है भूख और प्यास लगी, और शमी ऋषि तपस्या में पूरी तरह समाधि में थे, राजा का स्वागत नहीं किया, महाराज परीक्षित को क्रोध आया और उन्होंने जो है उनको एक प्रकार से दंडित किया, अपमानित किया, एक मरा हुआ सांप अपने गले में डाल दिया। तो यहां लिखा अभूतपूर्व था, ऐसा पहले कभी सुना नहीं गया कि कोई इस प्रकार से महान भक्त से संत के प्रति करें। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण साधु बालक स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों ना करे, कभी गुनहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहां पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। देखिए पहला प्रसंग है अपने सेल्फ क्या कह सकते हैं उसे, स्वार्थ के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जब पूरा नहीं हुआ, तो महाराज परीक्षित जैसे शुद्ध भक्त भी क्या है, क्रोधित होते हैं। यहां क्रोध का एक पहला जो है उदाहरण यहां पे हमको दिखाई पड़ता है। राजा का लिप्रावाद उत्तर दे रहे हैं इसका, इस लोग राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी अपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि था ब्राह्मण थे, अतएव वह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी ईर्ष्या नहीं करते, उसे भगवत भक्ति कभी किसी ईर्ष्या नहीं करता। बड़ा अमेजिंग कैरेक्टर है महाराज पर, ईर्ष्यावश नहीं किया उन्होंने, फिर ही प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह ठीक है ऐसा करना, लेकिन क्योंकि मुनि के प्रति किया तो बहुत अभूतपूर्व घटना है, भविष्य भूतकाल में पहले कभी ऐसी हुई नहीं घटना। तो अभी मैं 3-4-5 एग्जाम्पल आपको भागवतम में से जो देंगे वो सब राजाओं के एग्जाम्पल हैं। तो एक तरफ वो डिवोटीज हैं लेकिन साथ साथ वो एक राजा के कर्तव्य भी निभा रहे हैं। तो जब देखते हैं कि और राजा क्षत्रिय हैं तो स्वाभाविक है कि जब वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो किसी ना किसी कारण से वो क्रोधित हों। तो यहां एक राजा परिषद का पहला उदाहरण है कि अपनी भूख प्यास के कारण वो क्रोधित हुए। इसके बाद शमीक जब श्रृंगी ऋषि को जब मालूम चला कि उनके पिता का ऐसे अपमान हुआ है, वो ब्राह्मण थे उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए था लेकिन वो क्रोधित हुए और परिषद महाराज को श्राप देते हैं कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमीक ऋषि को पता लगता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि इसलिए नहीं होता कि परिषद महाराज ने उनका अपमान किया सांप डाल के, दुख होता है कि इस बालक ने राजा परिषद जैसे भगवत भक्त को जो है इस प्रकार श्राप दिया। और शमीक ऋषि जो है एक बहुत तो विचार कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए इसके, अब जो है इस बालक पुत्र ने जो मुनि पुत्र ने श्राप दिया है, जो गलती की है, इसका क्या किया जाए। तो वो मनन कर रहे होते हैं और एक श्लोक बोलते हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है सही भक्तों के लिए। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा शिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ती तद्भक्ता प्रभवोपि। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमान होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान के भक्तों को ऐसे करके। और फिर महाराज परिषद के कैरेक्टर के अंदर देखते हैं, जैसे ही राजा को पता लगता है कि उनकी मृत्यु आने वाली है, महाराज परिषद का कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। वो चाहते तो अपनी शक्ति थी कि उस मुनि पुत्र को दोबारा श्राप दे सके, वो चाहते तो शायद ये भी शक्ति होती कि उस श्राप को जो है नलीफाई कर दें। लेकिन महाराज परिषद ने भगवत इच्छा जानते हुए तुरंत क्या किया, पूरे राज्य भर का त्याग कर दिया उन्होंने, कोई बदले की भावना नहीं, कुछ नहीं। इस श्लोक में ही बता रहे हैं निःस्पृहाणा महात्मना, कि महान पुरुष जो है वो इंद्रियतृप्ति की आकांक्षा से रहित होते हैं। तो महाराज परिषद का एक उदाहरण हम देखते हैं। और जब उन्होंने श्राप को सांप डाला शमीक ऋषि में, तो प्रभुपाद कहते हैं केवल एक ही कारण है इसका कि भगवान की इच्छा है और कुछ नहीं है ऐसे करके। इसके बाद हम देखते हैं एक और महान, तो राजा परिषद जो है वो सहन करते हैं जो है इस श्राप को, और परिणाम क्या होता है इसका, श्रीमद् भागवतम का उद्गम होता है। अगर वो काउंटर कर्स करते, श्राप वापस देते, कुछ भी और बदला लेने की कोशिश करते, अपना बचाव करने की कोशिश करते तो भागवतम नहीं होती। लेकिन भगवत जानते भगवान के शरण ग्रहण की, तो एक शिक्षा हमें ये मिलती है महाराज परिषद के चरित्र से। दूसरी भागवतम के 3rd स्कंद के अंदर जो है कुरुओं की राज्य के अंदर विदुर जी का अपमान होता है, ये भी सब जानते हैं। विदुर जी धर्मराज हैं और वो धृतराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ वेलविशर हैं, शुभ चिंतक हैं, लेकिन फिर भी वो जब भी बोलते थे तो समहाउ सत्य बोलते थे वो, और दुर्योधन को बहुत कड़वी लगती थी। तो 3rd स्कंद में देखते हैं किस प्रकार जो है दुर्योधन का अपमान करते हैं उस राज्य के अंदर, जो है विदुर जी का अपमान करते हैं। महाभारत के युद्ध की घटना, युद्ध के पहले की घटना है। वो बोलते हैं इस दासी पुत्र, हिंदी में तो लिखा है इस रखेल के पुत्र को यहां आने के लिए किसने कहा है, यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है, इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और केवल इसके सांस भर चलने दो। वो बोलते हैं कि अपनी सांस को यहां लेके जाओ साथ में, नहीं तो वो सांस भी तुम्हारी निकाल ली जाएगी ऐसे करके। और विदुर जी कोई अपमान को जो है लेते भी नहीं, वो क्या करते हैं इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेजे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई को महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोच्च मानते थे। वो जानते थे कि दुर्योधन तो माया के प्रभाव के अंदर है और ये तीनों गुणों का प्रभाव है तो मुझे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो विदुर जी तीर्थाटन में निकल जाते ऐसे करके, इतना अपमान होने के बाद भी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है युद्ध पूरा हो जाता है, सारे कौरव मारे जाते हैं, विदुर जी खुश नहीं होते कि दुर्योधन मारा गया क्योंकि इसने मेरा अपमान किया था, उनके तो वो बदले की भावना नहीं थी। और वापस आते हैं और देखते हैं कि धृतराष्ट्र अभी भी अपने पद से इतना आसक्त है ऐसे करके, तो उसको बहुत। और विदुर जी आते हैं और मैत्रेय मुनि और कई अन्य संतों का संग करके, और रोजाना जो है हस्तिनापुर के राज्यसभा में जब भागवतम क्लास देते हैं वहां पे विदुर जी, लेकिन इतना करने के बाद भी जो है धृतराष्ट्र के अंदर वैराग्य नहीं जागता, वह तभी भी अपनी कुर्सी से आसक्त था। तब विदुर जी दयावश बहुत ही कठोर प्रचार करते हैं उन्हें, और अंत में धृतराष्ट्र को जो है भगवान के पति जाने के लिए उसको जो है प्रेरित करते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा प्रसंग था वो ये था कि विदुर जी जो है, क्योंकि भगवान के उन्नत भक्त हैं, वो भी अपना अपमान ग्रहण नहीं करते कुछ भी, और बदले में कुछ प्रतिकार नहीं, नान्यत प्रतिकूर्वंती तद भक्तो प्रभवो भी, ऐसे करके कि वो कोई प्रतिकार नहीं करते। लेकिन हम अभी यहां पर देखते हैं इस प्रसंग के अंदर चित्रकेतु महाराज भगवान शिव पर हंसते हैं और पार्वती देवी श्राप देती हैं। चौथे स्कंद में इसका विपरीत दिखने को मिलता है। दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन करते हैं, अपनी पुत्री सती को बुलाते नहीं है, वहां उसका अपमान करते हैं सती का, शिव जी का, और जब सती एक कॉम्प्रोमाइज चाहती होती है तो करते नहीं। सती फाइनली अपने सभी बहनों के सामने जो है अपना देह त्याग कर देती हैं, लेकिन तब शिव जी सहन नहीं करते, उस समय शिव जी रिटेलिएट करते हैं ऐसे करके। तो ये भागवतम के चौथे स्कंद की घटना है जो है, और तब शिव जी को क्रोध आता है और वो एक रक्षस का नाम नहीं आता, किसी प्रकार के असुरों का उत्पत्ति करते हैं और वो वहां जाते हैं और सभी जो प्रीस्ट होते हैं, जो अन्य देवता होते हैं वहां पे, और दक्ष प्रजापति सबकी हत्या कर देते हैं, सबको दंडित करते हैं ऐसे करके। तो शिवजी उस समय क्रोधित होते हैं, और जब शिवजी क्रोध करते हैं और चले जाते हैं वहां से अपने कैलाश पे जाकर, वो तपस्या मिली होते हैं, और सब होने के बाद भी शिवजी भगवान की समाधि में लीन है, सभी ऋषियों से जो है घिरे हुए हैं और उनका भजन चल रहा है, लेकिन सभी देवतागणों में त्राही त्राही मच चुकी होती है उस समय। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ कीजिए आप। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये शिव जी बहुत क्रोधित हुए हैं, मैं भी नहीं जानता कैसे प्रसन्न किया जाए, लेकिन ये पता है कि उनका नाम, एक नाम क्या है, आशुतोष, तो क्यों ना हम सब चलते हैं उनको प्रसन्न करते हैं, प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। और तब वो सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं शिव जी को और श्री संतुष्ट होते हैं। और इस सातवें अध्याय जब चौथे स्कंद का प्रारंभ होता है तो उसमें लिखा है, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। महादेव उवाच नाघम प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देव माया विभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। शिव ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। शिव जी कह रहे, मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि ये देवता बालकों के समान अल्प ज्ञानी हैं, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहा, मैंने तो उन्हें राह में लाने के लिए ही दंडित किया है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु या पिता, इनको अपने पुत्रों को या शिष्यों को दंडित करना चाहिए। saying in English, spoil the, save the child, no, save the rod and spoil the child, save the stick and spoil the child, अर्थात आप छड़ी को बचा लो और पुत्र को बिगड़ने दो। जैसे आप सबने एक एकता सुनी होगी, बट कॉमन सी सेइंग है, एक बारी एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी आदत पड़ जाती है स्कूल से बाकी बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में से कुछ पेंसिल चुराने की, शॉर्पनर चुराने की, ऐसे करके। तो जो टीचर्स होते हैं, जब उनको पता लगता है कि ये बच्चा चोरी करता है तो उनके माँ बाप को बताते हैं, लेकिन माता कोई एक्शन नहीं लेती। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, उनकी बुक्स चुराने लगता है, किसी का कुछ चुराने लगता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरदाय की जय, श्री प्रभुपाद की। उसके बाद धीरे धीरे वो ये चुराने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो लोगों के पॉकेट में से पर्स चुराने लगता है, पैसा चुराने लगता है, और बड़ा होता है तो वो जो है पूरा पॉकेट मार बन जाता है, और फिर एक किसी के घर में डाका डालता है, पकड़े जाता है, अदालत में सजा होती है उसको। तो जब उसका अपराध सिद्ध हो जाता है कि अपराधी है, तो क्षमा की जाती है, उसको सजा दी जाती है कि तुम्हें जो है सजाए मौत दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है। तो लेकिन तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, कुछ आखिरी इच्छा तो बताओ। तो कहते मुझे अपनी माता के कान में कुछ कहना है। तो माता वहीं होती है, अब माता से बात करने लग जाए तो क्या करते हैं, माता का कान काट लेता है ऐसे करके। तो माता चिल्लाती है वहां पे, बोले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले अगर बचपन जब मैंने चोरी शुरू की थी, अगर उस समय आपने मेरे को ठीक किया होता तो आज मुझे ये दंड नहीं मिलता ऐसे करके। तो इसीलिए माता पिता गुरुजनों का कर्तव्य है कि अपने आश्रितों को वो इस प्रकार से सिखाए, और सिखाने के लिए दंडित करना पड़ सकता है। तो प्रभुपाद यहां तात्पर्य में लिख रहे, दंड दो प्रकार का होता है, एक तो वह जो विजेता अपने शत्रु को देता है, और दूसरा वह जो अपने पिता अपने पुत्र को देता है। दंड के इन दोनों प्रकारों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान शिव स्वभाव से वैष्णव हैं, उनको आशुतोष कहा जाता है, वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, अतः वे तनिक भी क्रोध नहीं हुए। बिना क्रोधित किए उन्होंने जो है, वे किसी के भी शत्रु नहीं वरन सबों के शुभ चिंतक थे। जब भी वे किसी को दंड देते हैं तो उसी प्रकार जिस तरह पिता पुत्र को दंडित करता है। शिव जी पिता तुल्य थे हैं, क्योंकि वे किसी जीवात्मा के विशेष रूप से देवताओं के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते। तो इसलिए शिव जी प्रसन्न हो गए, तुरंत उन्होंने उसका रेक्टिफिकेशन बताया कि दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाओ, भग नामक देवता के नेत्रों देवता जो है मित्र के नेत्रों से देख पाएंगे। और वो रेमेडी बताते हैं कि इस प्रकार से जो जो देवता और ऋषियों का वध हुआ है, या उनके जो है किसी का सर काट दिया है, किसी का आंखें फोड़ दिया है, किसी के दांत तोड़ दिए हैं, इस प्रकार से हुआ था उस यज्ञ के अंदर, तो ये सब ठीक हो जाएंगे। और शिवजी बहुत अप्रभावित हुए बिना जो है इसका रेमेडी बताते हैं, कि नहीं उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी पत्नी जो है किया, तो अच्छा है उनको जो है मैं जाना चाहिए नहीं। शिव जी ने रेक्टिफाई द सिचुएशन। लेकिन रहते हैं यहां पे एक और कि क्रोध जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन वो क्रोध दूसरे प्रकार का क्रोध है, उनको सिखाने के लिए क्रोध है ऐसे करके। तो कभी कभी इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि क्रोधित नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद का तात्पर्य हमें मिलता है चौथे स्कंद के अंदर ध्रुव महाराज की कथा के अंदर, जिसमें देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ध्रुव महाराज के भाई उत्तम का जो है एक यक्ष ने वध कर दिया था हिमालय पर्वत में, और जो ध्रुव महाराज को पता लगा तो उन्हें बहुत क्रोध आया ऐसे करके। और ये बताया, ध्रुव महाराज हिमालय श्रेणी की उत्तरी दिशा में गए, उन्होंने घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेत, हाँ सॉरी, जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पूरी अलकापुरी पर विजय करने के लिए निकल पड़े। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ध्रुव महाराज का क्रुद्ध होना, शोक से अभिभूत होना तथा शत्रुओं से ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य एक भक्त के प्रतिकूल नहीं थे। यह भ्रांत धारणा है कि भक्त को क्रोध ईर्ष्या या शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। ध्रुव महाराज राजा थे, अतः जब उनके भाई को अकारण मार दिया गया तो उनका धर्म था कि हिमालय के यक्षों से भी बदला लेते। तो ध्रुव महाराज नॉट एज अ डिवोटी, एक भक्त के रूप में नहीं, एक राजा के रूप में अगर है, और उनके भाई की बिना किसी कारण मृत्यु हुई, तो एक राजा के कर्तव्य रूप से उन्हें जो है बदला लेना बिल्कुल स्वाभाविक है, जायज है, एक कह सकते हैं लीगलाइज्ड है, लेजिटिमेट है। लेकिन ध्रुव महाराज, ऑफकोर्स इस प्रसंग के अंदर भी हरिनाम की महिमा गुणगान होता है, ध्रुव महाराज यक्षों द्वारा से युद्ध करते हैं बहुत भयंकर, और यक्ष अपनी माया शक्ति प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव महाराज भी एक बार बिबिल्डर हो जाते हैं, और सभी जो है ऋषिगण आते हैं और बोलते हैं कि आप नारायण भगवान का नाम लो और उनका अस्त्र जो है करो। और शिवजी ध्रुव महाराज जैसे नारायण भगवान का नाम लेते हैं सारी माया दूर हो जाती है। और उसके बाद ध्रुव महाराज जो है असंख्य यक्षों का वध करने लग जाते हैं बिल्कुल क्रोध से अभिभूत। और तब स्वयंभू मनु उनके सामने आते हैं, बोलते हैं एक यक्ष की गलती से इतने सारे यक्षों का वध क्यों कर रहे हो आप ऐसे करके। तो बोले ये ठीक नहीं है कि क्रोध से इतना प्रभावित हो जाने पे वो वॉयलेंस करना, ये ठीक नहीं ऐसे करके। ठीक है तुमने बदला ले लिया, लेकिन अब क्रोध से खुद प्रभावित मत हो, उनका वध करना इज ओके, राजा के हिसाब से आपने किया है वध तो वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब खुद क्रोध से प्रभावित मत हो रजोगुण के द्वारा ऐसे करके। तो इस प्रसंग में एक और हमें जो है देखते हैं कि ध्रुव महाराज भी क्रोधित होते हैं यहां पर। इसके बाद पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं और वो यज्ञ करते हैं, पृथ्वी को जो है अपना शेयर देते हैं यज्ञ के अंदर, लेकिन पृथ्वी अन्न नहीं उत्पन्न करती, जब अन्न उत्पन्न नहीं करती तो सब प्रजा जो है वो अन्न नहीं होगा तो कैसे प्रजा रहेगी, है कि नहीं। तो ध्रुव पृथ्वी महाराज को बहुत क्रोध आता है, बहुत अधिक क्रोध आता है। चौथे स्कंद के अंत में बताया है, इनका अंत में नहीं बीच में, कि जो है ध्रुव महाराज जो है पृथ्वी महाराज पहले विचार करते हैं कि हो क्या रहा है, क्यों अनुत्पन्न नहीं हो रहा। जब उन्हें पता लगता है कि पृथ्वी अनुत्पन्न नहीं कर रही तो जो है वो क्या करते हैं, राजा अपना धनुष बाण उठाते हैं और उन्होंने पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। तो पृथ्वी की ओर जो है लेकर के दौड़ते हैं पृथ्वी को दंडित करने के लिए। और जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथ्वी आ रहे हैं तो क्या करती हैं, एक गाय का रूप धारण कर लेती हैं, गाय का रूप धारण करती हैं और वो जो है भाग रही होती हैं, लेकिन पृथ्वी महाराज भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और करते जा रहे हैं, पीछा करते जा रहे हैं और बहुत क्रोधित हैं ऐसे करके। और फिर जब पृथ्वी ने देखा कि असंभव है राजा पृथ्वी के द्वारा बचना, तो वो शरण लेती हैं और बोलती है कि आप तो धर्मज्ञ हो, आप तो राजा हो और जो है तुम्हें एक स्त्री का गाय का वध नहीं करना चाहिए, और मेरा वध कर दोगे तो तुम भी प्रजा समेत सब डूब जाओगे, और पृथ्वी का ही वध कर दोगे तो तुम अपने प्रजा समेत गर्भों तक सागर में डूब जाओगे, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो पृथ्वी महाराज कहते हैं कि नहीं, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अपना अंश ग्रहण किया है लेकिन बदले में पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं किया, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसे करके पृथ्वी महाराज ये कहते हैं। और फिर ऑफकोर्स जो है इस समय पृथ्वी महाराज यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत रोष में प्रतीत होने लगा। तो भागवत में सारे एक प्रकार से कहे जाने वाले अनर्थों का बहुत विविध डिस्क्रिप्शन है। हम देखते हैं अगर कोई लश्क की बात बोले तो भागवतम के हर स्कंद में कहीं ना कहीं तो इस प्रकार वर्णन आता ही आता है, जो ऐसा लगेगा कि कोई जो है मान लीजिए पोर्नोग्राफी मूवी चल रही हो, इस प्रकार से जैसा वर्णन आता है बुरा मानेगा लेकिन ऐसा है। अजामिल के प्रसंग के अंदर या मोहिनी मूर्ति का डिस्क्रिप्शन है, या कहीं भी स्त्रियों के सुंदर का वर्णन आता है, ऐसे क्रोध का वर्णन देख रहे हैं यहां पे, लोभ का देख रहे हैं तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। तो बताइए पृथ्वी महाराज शुद्ध भक्त है, भगवान शक्तिवेश अवतार है, वो उनका सारा शरीर रोष में प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे, उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। तो यहां पर देखते हैं पृथ्वी महाराज एक राजा हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो है क्रोध का उपयोग किया कि अपनी प्रजा का को प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्योंकि राजा जो है वो नरदेव कहलाते हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान कहते हैं यदा यदा धर्म से अग्लानित भवति भारत, तो धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए जो है एक राजा को भी न्याय अपने हाथ में लेना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक जो है लीडर बनना एक बहुत डिफिकल्ट कार्य है, क्योंकि जो मिस्क्रियंट्स हैं, जो आतताई हैं, उनको डिसिप्लिन करना ये एक बहुत बड़ी जो है समस्या कहते हैं या बहुत कठिनाई का विषय है। ऐसे करके जैसे हम देखते हैं महाराज परीक्षित ने जब देखा कि कलिदास साक्षात जो है एक बैल को जो कि एक पैर पे खड़ा है उसको मारने के लिए वो लाठी लेके मार रहे हैं, तो तुरंत महाराज परीक्षित तलवार निकाल ली बाहर और उस बैल से पूछा कि अरे भाई तुम्हारा ये हाल किसने किया है। तो बैल बोलते हैं धर्मम ब्रवीश धर्मज्ञ असूचकस्यापि तद् भवेत्, कि अरे भाई जो पाप के कार्य की ओर इंगित करता है वो भी पाप का भागी होता है, तो इसलिए आप तो धर्मज्ञ आप खुद ही जान जाओ किसने किया है। बोले कि किसी ने मेरे साथ ये जो है करतूत की है, तो अगर मैं बोलता हूं कि ये व्यक्ति अपराधी है तो मैं भी उस पाप का भोगी हूं, ऐसे करके मैं भी उस पाप का भागी हूं, इसलिए आप राजा भाव खुद समझ जाओ। और क्योंकि उस बैल ने बोला नहीं कि इस कलिराज ने किया है, इसलिए महाराज परीक्षित ने उसको दंड उसको जो है मारा नहीं, नहीं तो महाराज तुरंत उसको वध कर देते। ऐसे करके तो कहने का अर्थ है कि जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो एक राजा को एक लीडर को ही हैज टू डिसिप्लिन हिज सबॉर्डिनेट्स द मिस्क्रियंट्स, जो लोग राज्य में समस्या कर रहे हैं उनको डिसिप्लिन करना एक नेता का, एक राजा का, एक लीडर का कर्तव्य है। ऐसे करके तो उसके लिए हम देखते हैं क्रोधित भी होते हैं। ऐसे करके तो क्रोध का अलग अलग जगह प्रदर्शन भी हो रहा है। यहां माता पार्वती के द्वारा जो क्रोध है ये भी हम देखते हैं, वो श्राप देती हैं, तो उसका एक कारण ये है कि वो पतिव्रता स्त्री हैं, दूसरा कारण ये है कि जब भी किसी शुद्ध भक्त का अपमान हो तो निश्चित रूप से आपको रिटेलिएट करना चाहिए ऐसे करके। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण तो हमें याद है ऐसे करके। एक उदाहरण तो देते हैं किसका, चैतन्य महाप्रभु का स्वयं। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दीतृणादपि सुनी चैन तरह सहिष्णुना, लेकिन जब उन्होंने सुना कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया जगाई और मधाई ने, तुरंत महाप्रभु बिल्कुल क्रोध हो उठे और सुदर्शन चक्र को बुला दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं क्रोध साथ क्रोध काम क्रोध कृष्णार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भक्तों के द्वेषी जन हो उनके प्रति जो है क्रोध करना चाहिए ऐसे करके। दूसरा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी किनका, हनुमान जी का, कि हनुमान जी ने जो है जब लंका में गए और देखा सीता माता की स्थिति को तो वो क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने क्या किया, पूरी लंका में आग लगा दिया ऐसे करके। तो प्रभुपाद देव देते हैं कि उन्होंने क्रोध का प्रदर्शित किया ऐसे करके। ऑफकोर्स तीसरा एक उदाहरण दिया जाता है अर्जुन का भी ऐसे करके, और अर्जुन और भीम का, कि वो भी कितने क्रोधित हुए द्रौपदी का जब अपमान हुआ। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखते हैं मुस्कुराते हुए तो कोई किसी का वध नहीं कर सकता है ना, खुश होते होते चलो अर्जुन बहुत खुश होते होते कर्ण का वध कर दिया, ऐसा नहीं, उनको क्रोध आग बबूला होना पड़ेगा। और युद्ध में देखते हैं हम किस प्रकार से एक दूसरे को वो जो है अब शब्द कहते हैं, एक दूसरे का क्रोध एंटाइज करते हैं ऐसे करके, है कि नहीं। लेकिन ये सब एक राजा के रूप में देखे तो इससे एक शिक्षा मिलती है भक्तों के समाज के अंदर, कि भक्तों के अलग अलग स्वभाव हो सकते हैं। देखिए जब वो राजा का कर्तव्य निभा रहे हैं, ध्रुव महाराज हो चाहे वे पृथु महाराज हो, तो उस कर्तव्य के लिए उन्हें क्रोध जो है, या इवन परीक्षित महाराज भी हैं, उस कर्तव्य के लिए किसी प्रकार का क्रोध करना या कोई एक्शन लेना ये ठीक है, लेकिन ब्राह्मण पुत्र के लिए ठीक नहीं था क्रोध करना ऐसे करके। तो ऐसा कहना कि भक्त क्रोध नहीं कर सकता, ये एक थोड़ी प्रभुपाद कह रहे भ्रांत धारणा है, क्योंकि भक्त एक जो है पत्थर तो है नहीं ऐसे करके। ये मायावाद फिलॉसफी है कि भक्त के अंदर कोई भावनाएं नहीं होती। तो भक्तों में भी हम देख सकते हैं क्रोध होना, शोकित शोक होना, ये हो सकता है, और शुद्ध भक्तों में भी हो सकता है ऐसा करके, कुछ हद तक देखें तो ऐसे करके। अलग उदाहरण मिल सकते हैं, श्रीवास ठाकुर के जब पुत्र की मृत्यु हुई तो वो संकीर्तन में ही भाग लेते रहे ऐसे करके, तो वो प्रभावित नहीं हुए। लेकिन हम कई भक्तों के केस में देखेंगे तो प्रभावित होते भी हैं, विशेषकर हम देखते हैं पांडवों केस के अंदर, तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा धर्म का पालन करते थे, वो उनको भी बहुत क्रोध आता था ऐसे करके। चाहते तो वो खाली भृगुटी माता सबका वध कर सकते थे, उनके अंदर इतनी शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि धर्म का पालन करना है हर समय। लेकिन भीम थे तो बिल्कुल यमराज पर्सोनिफाइड ऐसे करके। तो कहने का मतलब यह है कि भक्तों में भी अलग अलग प्रकार के सो कॉल्ड दोष हमें दिख सकते हैं ऐसे करके, या भावनाएं दिख सकती हैं जो हमें लगे भक्तों में नहीं होनी चाहिए। तो जब हम देखें तो इसको दो प्रकार समझना चाहिए, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, कि वैष्णव कार्य को सफलता बहुत मुश्किल है, और दूसरा ये कि वैष्णव भी चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भक्त हो लेकिन अपनी सोशल पोजिशन, अपने स्वभाव के कारण कभी कभी एक्ट जरूर करते हैं ऐसे करके। या बहुत उन्नत भक्त हैं तो भगवान की शक्ति के जो है, भगवान की माया के अभिभूत होकर के वो कार्य करते हैं। तो ये भी हम देखने को मिलता है भक्त समाज के अंदर, हम ऐसा देख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जीवन थोड़ा शांत रह सकता है, हमारी कोई सेंटिमेंटल एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, कुछ भावुकताएं भावुक आकांक्षाएं नहीं होगी कि भक्त को ऐसा होना चाहिए, भक्त को वैसा होना चाहिए। अनेकों भक्त अनेकों प्रकार के हो सकते हैं ऐसे करके। भक्तों में बहुत सारी विविधताएं मिलती हैं, जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण के द्वारका की पटरानियों में रुक्मिणी देवी बहुत ही माइल्ड हैं, बहुत ही नम्र हैं। हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब उनसे मजाक करते हैं और बेहोश हो जाती हैं ऐसे करके। अगर वही मजाक भगवान सत्यभामा के साथ किया होता है कि नहीं, तो भगवान बेहोश हो जाते है कि नहीं, क्योंकि सत्यभामा जो है स्वभाव से इतनी क्रोध वाली है ऐसे करके। लेकिन भगवान इन सब जो है रसों को भावों को जो है भगवान इन सबको रिलीज कर सकते हैं, भगवान रिलीज करते हैं। इसीलिए भक्त जो है अनेकों जैसे प्रकाश प्रभु जी बता रहे जगदान पंडित के पास टाइम जो सत्यभामा है और जगदान पंडित बन के रूप बन के आए, तो भगवान सारे रसों को रिकनसाइल कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में इसलिए जो है ब्रह्मादि प्रार्थना कर रही, यम क्रोध काम सहज प्रणयाधिभीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भाव ही समचिंतय तस्य सदृश तनुमा पुरेते गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि यम क्रोध काम सहज प्रणय आदि भीति भीति भय वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेज भाव है। सब प्रकार के भाव जो हैं आध्यात्मिक जीवन में होते हैं। ऐसे करके इसका मतलब ये नहीं कि हम सब भक्त भी क्रोध करना चालू कर दें और अपने क्रोध को जो है ये नाम दें कि भगवान रविश कर रहे हैं। ऐसे करके तो हम भक्तों के लिए शिक्षा मिलती है भगवान के अनेकों अनेकों भक्तों के आचरण के द्वारा। पहला उदाहरण दिया महाराज परीक्षित ने जब सहन किया, दूसरा विदुर जी ने, तीसरा भगवान के स्वयं के आचरण से। कल प्रभु जी ने उदाहरण दिया था गांधारी के श्राप के द्वारा। एक कृष्णा बुक में आपको अंतिम के में एक कथा हमको मिलती है, भृगु मुनि जब वो टेस्ट करते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कौन है, तो ब्रह्मा जी को जो है वो मानसिक रूप से अपमान करते हैं, शिव जी का वर्बल रूप से अपमान करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को क्या करते हैं, छाती में जाकर लात मारते हैं। अब सोचिए, अब भगवान विष्णु क्या कहते हैं, वो जगते हैं और बोलते हैं आपके पैर में चोट तो नहीं लगे। सो दैट इज कॉल्ड एपिटम ऑफ टॉलरेंस। ऐसे करके तो ये एक शिक्षा मिलती है। चौथी शिक्षा हमें अभी इसी स्कंद का हमने पढ़ा, दक्ष प्रजापति ने किसको श्राप दिया था, नारद मुनि को। ऐसे करके बहुत सारा अपशब्द सुनाए थे उनको कि आप भक्त हो और साधु हो और साधु के रूप में सुनते हो, लेकिन नारद मुनि ने जो है चुपचाप सहन कर लिया ऐसे करके उसे। तो प्रिंसिपल ये है कि भक्त जो है अपने प्रति की गई व्यक्तिगत अपमान को अपराध को आसानी से सहन कर लेता है, जिस प्रकार चित्रकेतु तो महाराज ने भी यहां सहन किया ऐसे करके। और ऐसी सहनशीलता से होता क्या है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे करके। और ये हम वेदाव्यास में सर्च कर रहे थे टॉलरेंस वर्ड को ऐसे करके, तो बहुत अनेकों अनेकों रुचिकर चीजें प्राप्त होने को मिली जो सामान्यतः छूट सकती हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम्हारी सहनशीलता और डिटर्मिनेशन हिंदी में क्या कहेंगे, दृढ़ संकल्प, तुम्हारी दृढ़ता और सहनशीलता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। दृढ़ता कैसे, इतनी विपरीत स्थिति थी, इतने ट्रिबुलेशन थे, लेकिन आपने जो है मेरा स्मरण करना नहीं छोड़ा। और सहनशीलता कैसे, इस हिरण्यकश्यप के प्रति आप अभी भी जो है कोई आपने अपराध नहीं लिया, हिरण्यकश्यप का वध हो गया, भगवान ने बोला प्रहलाद मां से कुछ मांगो, बोले मैं बनिया थोड़ी हूं जो मांगूंगा, भगवान बोलते कि नहीं अरे मांगो कुछ मेरी पसंदा के लिए मांगो, बोले ठीक है अगर आप चाहते हो तो इतना कर दो इस हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दो, क्योंकि चाहे कैसा भी था अपनी गोद में तो बिठाता था मुझे, मेरा पिता था प्रेम तो करता था मुझे। तो नरसिंह भगवान कहते हैं जिसको सहनशीलता, प्रभुपाद दशरथ स्कंद के चौथे पांचवें अध्याय के श्लोक में बताते हैं गीता में कि, और हमने राधा महाराज सुना था कि सहनशीलता, और ये सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मुझे ये श्लोक पे बोलना भी चाहिए कि नहीं, तो बहुत मुश्किल है ये। प्रभुपाद क्षमा क्वालिटी को, क्षमा का अर्थ है, क्षमा मतलब बहुत इजी, फॉरगिवनेस, प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस, कि जो टॉलरेंस की क्वालिटी है उसका इनहेरेंट पार्ट है फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता। अगर सहन किया लेकिन किसी के प्रति मन में बहुत ग्रज है तो वो सहन कहां किया ऐसे करके। तो ये एक जो है टॉलरेंस की क्वालिटी का, दोनों अलग नहीं की जा सकती, सहनशीलता और क्षमाशीलता दोनों बहुत इंटरनेटेड क्वालिटीज हैं। कि सहन करना अर्थात अपराध बोध नहीं लेना कि नहीं नहीं चलो मैंने सहन कर लिया, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता ऐसे करके। चित्र के तो महाराज वो बिल्कुल इज फिक्स्ड, ठीक है श्राप मिल गया कोई बात नहीं, भगवान का भजन करना कोई दिक्कत नहीं ऐसे करके, इस दुनिया में तो सुख दुख आता ही रहेगा, इस पास मान अपमान चलता ही रहेगा जो है, तो नॉट अट डिस्टर्ब। देखो कृष्ण से स्ताम स्व भारत, और गीता में और शास्त्रों के अंदर सब जगह इस सहनशीलता की इस क्वालिटी को बहुत अधिक ग्लोरीफाई किया गया है, और भगवान शिव भी जो है यहां पे इसी क्वालिटी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि तुमने वैष्णवों की महानता देख ली, श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार में सांसारिक रुचि नहीं करते हैं। और विष्णु टंगर बताते हैं शायद ऐसे करके कि पार्वती बहुत कंफ्यूज है कि भगवान के भक्त ऐसे महान कैसे हो सकते हैं, कैसे इतने महान हो गए कि श्राप दिया और श्राप देने के बाद क्षमा मांग करके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उनको पसंद करते हुए आराम से असुर बन गए। तो अगला श्लोक जो है वो बहुत फेमस श्लोक है पूरे इस प्रसंग का, सबको मालूम भी होगा श्लोक, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। तो कल प्रभाजी प्रवचन होगा, परसों के वक्ता होंगे श्लोक पे बोलेंगे ऐसे करके। तो बस इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं ऐसे करके, क्योंकि भगवान के भक्त है इसीलिए वो फियरलेस हैं ऐसे करके। और इस फियरलेस भागवतम के आठवें स्कंद के अंदर जहां एक और घटना मिलती है श्राप की, वो श्राप किसको मिला, बलि महाराज को। बलि महाराज जो है वामन देव आते हैं, सबको कथा मालूम है, छल से वहां पे आता है वामन के रूप में और शुक्राचार्य बोलते हैं अरे ये विष्णु है तुम्हारा सब कुछ जो है छीन लेगा। और उसके बाद भी जब अलि महाराज बोलते हैं अगर विष्णु का ही है छीन लिया तो अच्छी बात है ऐसे करके और अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं त्याग करते हैं, शुक्राचार्य क्या करते हैं श्राप दे देते हैं तो तुम्हारा सब कुछ जो है हाँ लुट जो है नष्ट हो जाएगा इस प्रकार से ये जो है बालक छीन लेगा। लेकिन बलि महाराज जो है सहन कर लेते हैं उस श्राप को, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या होता है सब सहन कर लिया भगवान ने तो दो कदम के अंदर सब ऊपर नीचे नाप लिया, बोले तीसरा कदम कहां रखूं, तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए भगवान ने क्या किया बांध लिया उन्हें, गरुड़ जी आए और उनको जो है वरुण पास से जो है बांध लिया, अपमानित किया गया उनको सोचिए। लेकिन बलि महाराज आत्मसमर्पण ऐसे करके बलि महाराज ने उनको ये नहीं लगा ये विष्णु ने तो ठग लिया मेरा अपमान कर दिया, वो भी राजा थे ऐसे करके और क्षत्रियों के अंदर स्वाभाविक रूप है कि जो है मतलब फॉल्स ईगो रहता है। लेकिन बलि महाराज का गुणगान किया गया है, बलि महाराज यद्यपि धन विहीन अपने पद से च्युत अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, धन से भीन कर दिए गए, पोस्ट से हटा दिए गए, शत्रुओं से हरा दिए गए, कैदी बना लिया गया, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्तित हुए, निंदा की गई उनके रिलेटिव ने उनकी निंदा की, किसी के साथ ऐसा हो सोचिए वो तो डिप्रेशन और सुसाइड के द्वारा तुरंत ही मर जाएगा है कि नहीं सोचिए। और परित्यक्त बांधे जाने की पीड़ा से पीड़ित अपने गुरु द्वारा भक्ति शापित थे किंतु अपने व्रत में अटल रहे, सोचिए भक्ति की क्या जो है सोचिए कॉस्ट, उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, मैंने तो छल से धर्म के विषय में बातें कही किंतु उन्होंने धर्म में छोड़ा क्योंकि वे अपने वचन के पक्के थे, भगवान कह रहे हैं। और बलि महाराज ने भगवान द्वारा ली गई कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की, और प्रभा आगे तक अपने बता रहे हैं यह कोई सरल परीक्षा न थी ऐसे करके, तभी बलि महाराज एक महाजन है। और फिर भगवान कह रहे हैं अपनी महान शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता, वह सावरणी मनु के काल में स्वर्ग का राजा बनेगा। और प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि जो ये है राजा स्वर्ग के राजा बनेंगे, स्वाभाविक है जब राजा बनेंगे तो अन्य देवताओं से ईर्ष्या करेंगे तो हो सकता है फिर कोई दिक्कत हो। तो श्लोक में भगवान कह रहे हैं भवित इंद्रो मदाश्रय, भविष्य में मेरे आश्रय में रह के राजा बनेंगे ऐसे करके। और प्रभुपाद फिर अगले इसी प्रसंग में बता रहे हैं कि बलि महाराज ने चाहे भौतिक रूप से सब कुछ खो दिया लेकिन आध्यात्मिक रूप से भगवान का आश्रय ग्रहण किया ऐसे करके आश्रय प्राप्त किया और अब वो हर स्थिति में प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो जो भक्त इससे एक शिक्षा मिलती है कि प्रशिक्षा कहने के लिए बोल सकते हैं ऐसे करके जो बहुत मुश्किल है कि यदि हम इस प्रकार सहन करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे करके। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जो शो कॉल्ड शेल्टर है दुनिया के अंदर में लिए हुए हैं अगर वो हमसे छीन भी जाते हैं हमें भगवान का आश्रय प्रदान होता है ऐसे करके, है कि नहीं। तो जो है टॉलरेंस प्लीज द लॉर्ड अल्टीमेटली, इसीलिए भक्त जो है वो सहन कर लेता है कि हार जीत में ज्यादा रखा नहीं है, बड़ी बात क्या है भगवान किसमें प्रसन्न होते हैं ऐसे करके। मैं सही है वो सही उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन गलत कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बात है भगवान की सेवा होने चाहिए भगवान प्रसन्न होने चाहिए ऐसे करके। और भगवान इसीलिए जो है भगवान कृष्ण बलराम जी को गुणगान करते हैं और चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं सहनशीलता में, किसका एक उदाहरण दिया जाता है रोज सुबह हम गाते भी हैं पेड़ का तरोरपि सहिष्णुना। तो चैतन्य चरितामृत के जब महाप्रभु शिष्टाचार बता रहे हैं तो उसमें वृक्ष की क्वालिटी बताई गई है कि सहनशीलता होती क्या है और उस सहनशीलता का एपिटोम पर्सोनिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो बस उससे हम अंत करेंगे ऐसे करके। तो यहां बताया गया है जो है चैतन्यानंद में तृणादपि सुनिचेन तरो अमानिनामान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को घात के दिन के लिए तुच्छ मानकर पृष्ठ भी सहनशील होकर मिथ्या मान की भावना सदा शून्य रहकर एक दूसरों को सदा ही मान देने वाला होता है वह बहुत सरलता से भगवान का निरंतर जप कर सकता है। और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं उत्तम हैया आपना ना के माने तृणाधम दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है ये उसके लक्षण है, हालांकि वह बहुत उन्नत है बहुत महान है लेकिन अपने को वो घास के बड़े तिनके से भी अधम समझता है और वृक्ष से भी अधिक वह सहनशील होता है। वृक्ष ये न काटी है लह किछु न बोला है सूक्ष्म न मालिह क्यारे पानी न मांगाए। जब एक पेड़ को काटा जाता है वो कोई क्या बोलते हैं कोई प्रतिकार नहीं करता कि मुझे बचाओ, और जब वो सूखता है तो पानी नहीं मांगता किसी से ऐसे करके कि मुझे पानी चाहिए, ये उसकी सहनशीलता है। ये मागाए तारे दे आपन्धन घर्म वृष्टि सहे आनिर कर ये रक्षण। और जो कुछ भी वृक्ष जो है वृक्ष के पास होता है चाहे वो फल हो फ्रूट हो कोई भी आगे मांगता है रास्ते में चलता हो भी उससे फल फूल लेगा तोड़ेगा तो वृक्ष कुछ नहीं कहता ऐसे करके कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा केवल राजा को दूंगा या नहीं दूंगा मुझे कोई मोल भाव, कुछ नहीं कहता ऐसे करके। उसके बाद घर्म वृष्टि सहे अनेर कर ये रक्षण। और वृक्ष क्या करता है वो गर्मी और बारिश सब सहन करता है लेकिन क्या करता है सहन करते हुए दूसरों को आश्रय प्रदान करता है। जब बारिश होती है पेड़ छिप जाते हैं, गर्मी आए तभी लोग पेड़ के चले जाते हैं, है कि नहीं, तो वृक्ष दूसरों को जो है प्रदान करता है। उसे उत्तम है या वैष्णव हवे निर्भिमान जीवे समान देवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। ऑल्दो वैष्णव इज द मोस्ट एग्जॉल्टेड पर्सन इज प्राइडलेस एंड गिव ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन। हालांकि एक वैष्णव बहुत उत्तम व्यक्ति है लेकिन वो अनित अभिमान से शून्य होता है, सबको आदर देता है यह जानते हुए कि सबके अंदर जो है कृष्ण विद्यमान है। और यदि इस प्रकार से कोई भगवान कृष्ण के हरिनाम का गुणगान करेगा स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करेगा। और ये विशेष गुण किन एक आचार्य के अंदर था, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के अंदर। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावनदास ठाकुर चैतन्य चरितार्थ चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर का गुणगान अनलिमिटेड रूप से करते हैं। ऐसे करके ये एक है जिनका जो आदि हरिदास ठाकुर की आदिलीला का वर्णन चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर करते हैं और दो अध्याय या एक अध्याय तो पूरा दिया है उनके नाम के ऊपर। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितार्थ के अंदर उनके निर्माण लीला को और भी कई अनेक पास टाइम्स को बताते हैं ऐसे करके। और सबसे महत्वपूर्ण बात हरिदास ठाकुर क्या थी, हम सबने वो कथा सुनी है एक बार ही हरिदास ठाकुर जब जो होता है वो जब करते होते हैं तो उनको राजा बुलाता है ऐसे करके। और जब राजा के पास वो जा रहे होते बिल्कुल निर्भय जैसे चित्रकेतु महाराजा बिल्कुल निर्भीक हैं और वो जेल से होके जाते हैं ऐसे करके। और जेल से जाते सब कैदियों को पता होता है कि हरिदास ठाकुर यहां से निकलेंगे तो बहुत प्रसन्न होती है उनको कि हमारे हरिदास ठाकुर को दर्शन करने का प्राप्त होगा, हरिदास ठाकुर दर्शन प्राप्त होगा। और जब वो जेल से जा रहे होते हैं सभी कैदी पूरे जेल से उत्सुक होकर उनको देख रहे होते हैं, हरिदास ठाकुर जा रहे हैं उनको प्रणाम करते हैं और सब भगवान कृष्ण के नामों का गुणगान करते हैं। और हरिदास ठाकुर जो है उन सबकी ओर देखते हैं करुणा दृष्टि से और बोलते हैं तुम लोग जैसी स्थिति में हो हमेशा वैसी स्थिति में रहो। वो सब डर जाते हैं ऐसे करके, बोले ये हरिदास ठाकुर ने ऐसा क्यों बोला कि हम तो जेल के अंदर जेल में रहे ऐसा क्यों बोला, हमने सोचा हरिदास ठाकुर को देखने से बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी। तो हरिदास ठाकुर समझ जाते हैं कि सब थोड़े कंफ्यूज है मैं क्या बोल रहा हूं समझ नहीं पाए, तो वो आगे अभिप्राय बताते हैं बोले कि इस स्थिति में आप लोग क्या कर रहे हो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो भगवान के नामों का जप कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया, मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम हमेशा इस जेल में जो है असहाय स्थिति में रह करके भगवान के नामों का जप कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि हमेशा इस प्रकार असहाय स्थिति में भगवान कृष्ण के नामों का गुणगान करो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये मैंने तुम्हें जो है वरदान दिया है ऐसे करके ऐसा करो, हमेशा भगवान के जप करो। और बहुत ही शिक्षा देते हैं उन्हें लेकिन मुख्य शिक्षा ये थी उसके अंदर कि असहाय भावना से भगवान के नामों को पुकारो। और फिर हरिदास ठाकुर जाते हैं कहां पर राजा के पास, और राजा जो है राजा उनसे प्रभावित होता है एक बार, लेकिन वो दुष्ट काजी होता है जो बोलता है वो राजा को उकसाता है कि इसको सजा दो, बोले क्या सजा दी जाए, तो बोलते हैं कि 22 बाजारों में इसको जो है पिटाई की जाए इसकी ऐसे करके, जिस प्रकार एक जानवर की पिटाई की जाती है तो जल्लाद से पिटाई करते हैं, सामान्य 3-4 मार्केट बाजार के अंदर पिटाई करने पर कोई व्यक्ति सही छोड़ जाता, 22 बाजार पीटने पर हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं होता, वो केवल भगवान के नामों का जप करते जा रहे हैं ऐसे करके। फिर बाद में जल्लाद बोलते हैं अरे भाई अगर तुम नहीं छोड़ोगे शरीर तो राजा हमें मार देगा ऐसे करके, और हरिदास ठाकुर को चिंता ही नहीं, तुरंत जो है ऐसे लेट जाते हैं जैसे कि वो समाधि सो जाते हैं जैसे कि वो बिल्कुल शव के समान है। और जब शव को लेके आते राजा के पास में तो राजा और काजी बहुत खुश होते हैं, बोले क्या किया जाए इसके साथ, तो राजा बोलता है कि दफना दो इसे। तो काजी बोलता नहीं, दफना दिया अगर मुसलमानों की तरह तो उसे बहुत उत्तम गति प्राप्त होगी, उसे जन्नत की प्राप्ति होगी, तो इसीलिए इसको क्या किया जाए, और जला देंगे तो हिंदू तरीके से होगा, इसके शव को जानवरों की तरह गंगा में फेंक दो, ऐसे करके। और हरदास ठाकुर जाते हैं और हरदास ठाकुर तैयार करके वापस आते हैं, और इतने निडर उसी गांव में वापस आते हैं और वहीं आके हरे कृष्ण मोहन गुणगान कर रहे होते हैं। और ये देखकर सारे जल्लाद, सभी राजा जो है वो राजा और काजी सब बहुत प्रभावित होते हैं, और तब के चरणों में गिर जाते हैं कि तुम वास्तविकता में पीर हो, एक वास्तविक संत पुरुष हो, ऐसे करके सब समझ जाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर उन सबको भी एक बार भी नहीं सोचते कि इन्होंने मेरी पिटाई की थी, इन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया था, ऐसे करके तो इनके साथ बुरा हो। हालांकि भगवान नहीं सहन कर सकते एक वैष्णव के प्रति अपराध, तभी चैतन्य भागवत बताता है कि उन सभी जल्लादों के परिवार, वो परिवार समेत थोड़े दिनों में सब नष्ट हो गए, एक मास से दो मास बताया वहां पे, यार सब नष्ट हो गए उस गांव से, ऐसे करके, क्योंकि हरदास ठाकुर के प्रति ऐसा अपराध हुआ था। तो जो है, लेकिन हरदास ठाकुर में एक क्वालिटी थी और तभी वो निंदा जप कर सकते थे, ऐसे करके भगवान के नामों का जप कर सकते थे। और यही जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शिक्षा है। ऐसे करके हम पढ़ रहे थे चैतन्य में, और रिसेंटली प्रश्न बुझा था रूपिन केशव से, उन्होंने भी उत्तर दिया था कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें उनका आश्रय प्राप्त हुआ है, लेकिन आश्रय ग्रहण करने का मतलब है उनकी शिक्षाओं का पालन करना। और प्रभुपाद जी परपोर्ट के बाद परपोर्ट के अंदर जो है आश्रय ग्रहण करने का मतलब लिखते हैं कि उनकी शिक्षा किसका पालन करना, तृणादपि सुनिचेन तरुणपि सहिष्णुना अमान न मान देना कीर्ति निषदा हरि की, इस शिक्षा को पालन करना वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करना है, ऐसे करके। लेकिन बस हम दो मिनट में विराम देते हैं कि कुछ शिक्षा जो हमें मिलती है प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, वो ये है सबसे पहले कि हमें अपने क्रोध को इस्तेमाल करना है किसके प्रति, जो भक्तों से ईर्ष्या करते हो, लेकिन भक्तों के प्रति नहीं करना, ऐसे करके। लेकिन कई बार हम भक्त समाज में देखते हैं दो भक्तों में ही आपस में ईर्ष्या द्वेष हो, तो हमें क्या करना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं तो हमसे सब ऐसा होता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मैच्योर होकर के जो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, ये जो एनवी है भगवान कृष्ण के प्रति और भक्तों के प्रति, उसकी उपेक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम सबके अंदर वो एनवी ईर्ष्या है ही है भगवान के प्रति, तभी हम भौतिक जगत के अंदर हैं, तो हमें इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में कोई व्यक्ति भक्तों का मजाक उड़ाता है, जैसे बस में जा रहे हैं मान लीजिए, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई मजाक उड़ाता है, तो हमें क्या उसको पिटाई कर देनी चाहिए, सुदर्शन तो है नहीं, वध कर दें उसका, है कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए? और मान लो दो भक्तों में कुछ कहा सुनी, दो नहीं एक भक्त किसको प्रचार कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो गया और हाथापाई भी होने वाली है थोड़ी देर के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए? कभी सीन क्रिएट हो जाता है, ऐसा होता है, कभी ऑटो वाले से झगड़ा हो जाता है, ऐसे करके ऐसा कई बार ये होता है, ऐसे करके, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कई साल पहले ये हम भक्तों के अंदर ऐसा डिस्कशन हुआ था, तो फिर इस डिस्कशन में कई सारे मत आए अलग 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 शास्त्रिक दृष्टिकोण से को भी लेकर के, किस स्थिति में ऐसा होता ऐसा हुआ था। लेकिन जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा कंक्लूजन ये था, जब तो इस प्रकार से भक्तों के वेशभूषा में हम भक्तों को सबसे पहला फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है सुरक्षा भक्तों की, कि हाथापाई से पहले भक्तों को बचा लो, ऐसे करके, और दूसरा भी संस्था का और प्रभुपाद जी का नाम खराब ना हो, है कि नहीं? क्योंकि अगर पब्लिक में हम सीन क्रिएट करेंगे तो बदनामी किसी को देखो, भक्तों के भी ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको प्रिंसिपल नहीं मालूम कि अरे भाई भक्त भी क्रोध कर सकता है, तो चेतन भाव क्रोधित हो सकते हैं, तो इसीलिए ताकि अन्य लोग और अपराध बोध न करें, इसीलिए भक्त को मैच्योरता पूर्वक जो है स्थिति को हैंडल करना चाहिए कि झगड़ा भी ना हो, प्रोटेक्शन भी हो और लोगों के द्वारा अपराध भी ना हो, ऐसे करके। तो ये मैच्योरिटी के साथ हमें जो है करना चाहिए। तो इसीलिए वी शुड यूज अवर एंगर टूवर्ड डिवोटीज, नहीं नॉट टूवर्ड डिवोटीज, रादर पीपल आर एनवियस टूवर्ड डिवोटीज, ऐसे करके जो ईर्ष्यालु हैं। और साथ साथ जब भक्त समाज के अंदर हम देखते हैं तब हमें उसका नेग्लेक्ट करना चाहिए। दूसरा, जब हम देखें कोई दूसरा भक्त क्रोधित हो रहा है तो एक ना एक पार्टी को सहन कर लेना चाहिए, ऐसा करके। जैसे यहां देखते हैं चित्र के तो महाराज ने जो है सहन कर लिया, पश्चिम ने सहन कर लिया, विदुर जी ने सहन कर लिया, ऐसे करके। अभी दोनों ही गर्म होने लग जाए मान लीजिए तो क्या होगा, श्राप प्रतिश्राप, श्राप प्रतिश्राप, है कि नहीं? तो अगर भक्त समाज में तो ऐसा हो सकता है और होता भी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, क्योंकि सबका डिफरेंट नेचर्स है। और एक इंग्लिश में कहावत है, वी बॉइल एट डिफरेंट डिग्रीज, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, कोई 20 डिग्री बॉयल हो जाएगा, कोई 40 में, तो कोई 100 है, है कि नहीं, सबका अलग अलग जो है बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऐसे करके जिसकी जब सीमा आ जाती है तो बॉइल हो जाता है ऐसे करके, तो हमें जान जाना चाहिए अभी बॉइलिंग पॉइंट आए ठंडे भी हो जाएंगे ऐसे करके। तो ये मोमेंटरीली है, तो उस समय एक पार्टी को सहन कर लेना चाहिए कि अभी रजोगुण का प्रभाव है ऐसे करके, यू नो। और अगर किसी के हृदय में बहुत अधिक अपराध बोध लग जाता है, किसी के प्रति भावना आ जाती है क्षमा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हमें उस अपराध की भावना को अपने हृदय में और अधिक उसको क्या बोलते हैं जल नहीं डालना चाहिए, रादर किसी वरिष्ठ भक्त जो मेच्योर मीडिएटर हो उनको बीच में इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए और अपना हृदय उनके सामने रिवील करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं जब शिव जी क्रोध हुए तो सब देवी देवता किसके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, जब ध्रुव महाराज क्रोध हुए तो स्वयंभू मनु उनके पास आए ऐसे करके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि हमसे क्रोध सहन ना हो रहा हो तो हमें किसी वरिष्ठ भक्त का निस्वाभाविक रूप से जो है हेल्प लेना चाहिए, इन्वॉल्व मीडिएटर, किसी वरिष्ठ भक्त को जो कि मेच्योर हो, जो उस आग में तेल ना डालें पेट्रोल ना डालें, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही हो लो बदला, ऐसे ना करके जो है हमें ज्ञान दें, तरीका बताएं कि किस प्रकार से इस अपराध बोध की भावना से हम क्षमा हो सकते हैं। हमारा व्यक्तिगत भी इसमें एक अनुभव है कि एक भक्त के प्रति हमें बहुत क्रोध था, नाम लेते बिल्कुल हमारा बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो जाता था ऐसे करके, और एक साल नहीं वो 5-6 साल तक ये बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास था ऐसे करके। तो क्योंकि इसलिए मैं लास्ट में लिखा अपने व्यक्तिगत अनुभव से, लेकिन समा भगवान के अरेंजमेंट से ऐसा हुआ कि कुछ इंसिडेंट हुआ और हमने एक वरिष्ठ भक्त को ये बात बताया कि ऐसे प्रभु जी ऐसे ऐसे इतने साल पहले घटना हुई थी, और जब भी मैं उस भक्त को देखता हूँ सुनता हूँ तो ये घटना आती रहती है ऐसे करके। जनरली तो ऐसा और किसी भक्ति पति क्रोध नहीं पाला, लेकिन उनके पति इतने साल पहले था, ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उस समय मैंने क्लैरिफाई किया था लेकिन बात अधिक बढ़ गई थी ऐसे करके। तब उन भक्त ने जब समझा इस प्रॉब्लम को, दूसरे भक्त को भी जानते थे वो, हम दोनों को अच्छे से जानते थे ऐसे करके, तो वो समझ गए। उस समय तक कुछ नहीं बोले, धीरे धीरे से अरेंजमेंट किया उन्होंने कि बाद में जो है उन भक्त और हमारे भी दोनों के अंदर संबंध बहुत अच्छे हो गए ऐसे करके, और ना वो मेरे अंदर भावना रही ना उनके अंदर वो भावना रही ऐसे करके। अब वो भक्त तो हमारे साथ में नहीं ऐसे करके, इन द सेंस की ये फिजिकली प्रेजेंस नहीं है उनकी यहाँ पे, लेकिन ये एक है कि हमें वरिष्ठ भक्तों के, ताकि उस क्रोध की भावना से हम प्रभावित ना हो ऐसे करके, स्वयं में प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये एक चीज है। तो आप सभी भक्तों से हम प्रार्थना करते हैं कि ये सहनशीलता और एंगर के ऊपर कहना तो आसान है लेकिन उसका पालन करना बहुत मुश्किल है, ये तो श्लोक ऋणादपि सुचिंतर और भी सहिष्णु है ऐसे करके, लेकिन यही हमारे जीवन का लक्ष्य है वास्तविकता के अंदर, इसके ऊपर हमें अभ्यास करना जरूर प्रयास करना चाहिए। तो आप सब भक्तों से आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी इसका अपने जीवन में पालन कर सकें। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई टिप्पणी हो या तो बोल सकते हैं कुछ, एक आधा कोई कॉमेंट हो किसी भक्त का कुछ। यस जी, घर छोड़ना ये इतना महत्वपूर्ण, वही जनरली ये वर्ड बहुत बड़ी, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स भी प्रीचिंग करते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी क्या हमें टेंपल ज्वाइन करना पड़ेगा, सब जॉब छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने एक बोलते नहीं, आपको घर से जॉब से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। प्रॉब्लम घर में रहना या जॉब करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका आसक्ति एक्चुअली, अटैचमेंट। धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम क्या थी, वो भी तो अंधे थे बूढ़े थे ऐसे करके, तभी वो शायद जहां तो मेरे को ख्याल है सेवक को लेकर गांधारी और शायद कुंती देवी भी साथ में गई वहां पे ऐसे करके, कुंती के बाद आंखें थी तो वो लेके गई ऐसे करके। तो वो ठीक है, इसलिए घर छोड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर से आसक्ति छोड़ना प्रॉब्लम, घर में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में भगवान का भजन करें ना अभी छोड़ दो, हो गया ऐसे करके 50-60 के बाद ऐसे करके। तो ये महत्वपूर्ण है। तो धृतराष्ट्र ने वो आसक्ति नहीं, उस समय का सिस्टम था वानप्रस्थ लेना, तो धृतराष्ट्र ने किया, और तभी विदुर थे लेकिन कांस्टेंट उनका रिपोर्ट रखते थे कि कहां पे हैं क्या कर रहे हैं, विदुर जी वॉज टेकिंग केयर ऑफ देम इन स्पाइट ऑफ दिस की। और तभी विदुर जी को बाद में उनको बहुत एक चीज का दुख था, किस चीज का, खुश हुए बहुत कि इन्होंने समाधि ले लिया और अपनी स्वतः अग्नि प्रवेश हो गए, दुख था क्या कि भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, मैं शुद्ध भक्ति नहीं दे पाया, पता धृतराष्ट्र को भी ब्रह्म ज्योति के अंदर ही प्राप्त हुआ इस प्रकार से ऐसे करके, जो भागवत में डिस्क्रिप्शन आता है। तो विदुर जी को यह अपराध बोध था ऐसे करके। तो हमें ऑफकोर्स विदुर जैसा हम वेलविशर नहीं है कि अब हर किसी के घर पर जाके जहां तक 50-60 साल के लोग हैं तो हम बोलना शुरू कर दें कि यू नो हाँ कि बाहर जाओ आप भीम के द्वारा पले गए कुत्तों के द्वारा पले हो अभी तक और यू नो अंधा पुराई में वधी रहा कि कितना वो एकदम हैवी बोलते हैं उनको। बोले मंद प्रज्ञा च सांप्रतम वधी विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागम कफोद्वन। बोले इतना खांस रहे अलग अलग राग निकल रहे हैं, दांत टूट गए हैं, पेट में आंत नहीं है तुम्हारे, सब बहुत कुछ बोलते हैं उनको। तो लेकिन धृतराष्ट्र समझ पाते हैं कि ये मेरा वास्तविक हितैषी है और विदुर जी उनके जाने के भी ध्यान रखते हैं, बोलते भाई तो अंधा है वो कैसे करेगा ऐसे करके। तो किसी को ये बोलना कि घर छोड़ दो आज के जमाने के अंदर ये उतना ठीक नहीं है, उसको ये बोलो कि आप जो है अब घर से आसक्ति छोड़ के सब कुछ भगवान की सेवा में यहां लगाओ ऐसे करके आए और विशेषकर जब करें ध्यान पूर्वक ऐसे करके। और इसका एक प्रैक्टिकल चीज जो हमने अभी इस्कॉन में देख रहे हैं धीरे धीरे आ रहा है वो है ये फार्म कम्युनिटीज ऐसे करके। खासकर हमने सोलाधन महाराज का जो मॉडल देखा है तो उसमें कई सारे हम उनके एक वरिष्ठ शिष्य से मिले थे जो कि श्री चैतन्य प्रभु ऐसे करे गृहस्थ हैं वो, तो आज से 7-8 साल पहले मायापुर में उन्होंने लेक्चर दिया था। तो उनसे भक्तों ने पूछा, वो गृहस्थ भक्तों को दे रहे थे और संभव मैं एक सीनियर ब्रह्मचारी डिवोटी उनको असिस्ट कर रहा था तो उनके साथ में था। तो उनका एज है 45 है, 45 समय एज था, 45 के बीच में एज था, लेकिन उस समय उन्होंने रिटायरमेंट उसी एज में ले लिया था उन्होंने ऐसे करके 40-45 में। तो उन्होंने बोला मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है और उनके बेटे की उम्र 19 मतलब इस एज में थी लगभग 12th क्लास ऐसे कुछ थे। तो बोले बेटा सेटल हो जाएगा, अभी एक ही बेटा था और वो मंदिर में आके जो है वो सेवा करते थे, कोई बड़ा एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट सेटल कर रखा था और बहुत अच्छा प्रीचिंग भी करते थे ऐसे करके। तो प्रैक्टिकल बांधपस्त लिया उन्होंने क्योंकि उनका एंग्जाइटीज नहीं है अपने मतलब बच्चों की, अपनी जिम्मेदारी निभा लिया उन्होंने और पति पति दोनों जो है आके आराम से सेवा करते थे और बहुत एक्टिव थे। तो महाराज जो बोलते हैं, राधा महाराज जो बोलते हैं कि जब वानप्रस्थ मिले इस पास ग्रस्त तो उनके लिए क्या एस्टेब्लिश किया फार्म कम्युनिटीज, तो उन्होंने 50 एकड़ कहीं कैसे बाड़ा में फार्म हाउस खोला ऐसे करके। तो उनका लक्ष्य यही है कि जो वानप्रस्थ भक्त हैं 45 50 के बाद में वो शांतिपूर्वक बहुत सादे वातावरण के अंदर भगवान का भजन कर सकें। क्योंकि आप शहर में रहेंगे और कितना भी प्रयास कर लीजिए आपको बिल्स पे करने पड़ेंगे, सोशल फंक्शन अटेंड करने पड़ेंगे, वो वानप्रस्थ होता कहां है ऐसे करके। यस, तो महाराज ने ऐसा एक बहुत अच्छा विजन के साथ एक फैसिलिटी क्रिएट किया है और अब कई कई और मंदिर भी इसका जो है अनुकूल कर रहे हैं ऐसे करके जगह जगह। अभी हमको बता रहे थे नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया है कुछ एकड़ का लैंड लेके और हमारे गुरु महाराज ऐसा लैंड देख रहे हैं ताकि शांति से कम वृद्ध अवस्था के अंदर भक्त जो है वो कर सके ऐसे करके। हम सबको भी प्रयास करते अपना जीवन जितना सिंप्लीफाई कर सके करना चाहिए ऐसे करके, ये तो एक चीज है। आपको विदुर जी के शिक्षा तो हम एडवाइस नहीं पालन कर सकते यहाँ से, ये मेरा तो इतना अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में ऐसे कर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराशि भागवतम की जय, पिता गौर प्रेमानंदे, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।